ओम शांति। आज हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल मैराथन। ऐसे जब से समझ आती है तब से सबकी दौड़ शुरू हो ही जाती है। जन्म से ऐसे तो दौड़ शुरू हो जाती है, लेकिन जब से समझ आती है तब से हर एक की दौड़ शुरू हो जाती है। तो हमारा जीवन कैसा है? रेस की तरह है। बच्चा स्कूल में जाता है, उसकी माँ पीछे ही रह होती है कि अब आगे जाना है, आगे जाना है। तो बचपन से लेकर अंतिम श्वास तक हमारी ये मैराथन चलती रहती है। इस ब्राह्मण जीवन में भी हमारी एक स्पिरिचुअल मैराथन चलती है। जैसे आप सभी ने, हम सभी भी इस दौड़ में हैं, चाहे कोई भी हो, किसी की भी जीवन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कहाँ का भी हो, कोई देश का हो, लेकिन ये सभी को ये यात्रा पार करनी पड़ती है। किसी ने कहा है कि जीवन एक रेस है, जीवन एक संघर्ष भी है। बाइबल में भी पॉल ने मैराथन रेस का उपनाम दिया है जीवन का संघर्ष को। अभी थोड़ा सा मैराथन के बारे में, थोड़ा सा मैराथन के बारे में देखते हैं। आधुनिक साल 1896 में आधुनिक ओलंपिक्स के प्रथम आयोजन जब हुआ था, वो स्थल था एथेंस नगर, वहां से आरंभ की गया था। कहा जाता है कि 480 ईस्वी सन पूर्व यूनान के एथेंस नगर से 26 मील दूर मैराथन के युद्ध क्षेत्र में 10,000 यूनानी सैनिक लगभग 1,00,000 पर्शियन सैनिकों से अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे थे। ये निर्णायक युद्ध था और यूनानी योद्धाओं ने पर्शियनों को, 1,00,000 पर्शियनों को परास्त कर दिया था और भगा दिया था। यूनानी सेना ने एक प्रसिद्ध घावक माना दौड़ने वाला धावक, विजयी का महान धावक अपने कवच और टोप उतारकर एथेंस की ओर दौड़ पड़ा। वह युद्ध से बेहद थका हुआ था, लेकिन फिर भी पहाड़, जंगल, कंटीले झाड़ी वाले रास्ते को बिना कहीं रुके पार करता, आगे भागता ही रहा। एथेंस नगर से जब उसने प्रवेश किया तो उसके पैर खून से सने थे, उसकी सांस उखड़ रही थी। जमीन पर गिरने से पहले वह जोर से चिल्लाया, देशवासियों, हम युद्ध जीत गए हैं, खुशियां मनाओ। ऐसा बोलकर बहुत ही गिरकर ढेर हो गया। इस वीर घावक की यादगार में मैराथन दौड़ की शुरुआत ओलंपिक से किया गया। इसकी यादगार में लोग मैराथन की आयोजन करते हैं। तो हमारी ये स्पिरिचुअल मैराथन की दौड़ है, मंजिल है। वो हमारी मंजिल कौन सी है? यहाँ स्पिरिचुअल मैराथन की मंजिल कौन सी है हमारी? कौन सी मंजिल है? फरिश्ता बनना और बाप समान बनना और कर्मातीत बनना। बाप समान संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनना। और फिर बनकर के कहाँ जाना है? वापस घर जाना है। तो इस हमारी जो मैराथन है उसका लक्ष्य है उस मंजिल तक पहुंचने का। तो उसकी प्रोसेस है, तो हम मूर्ति बनकर के जाएंगे, संपूर्ण मूर्ति बनकर के। तो मूर्ति बनने के लिए आपने देखा होगा जो शिल्पकार होता है वो पत्थर से मूर्ति जब बनाता है तो आसपास की जितनी भी व्यर्थ पत्थर होते उसको हटा देते हैं, नहीं तो मूर्ति अच्छी नहीं बनती। उसको हैमर भी बहुत लगते हैं ना, हैमर बहुत लगते हैं। जितना हैमर लगेंगे अगर पत्थर टूट जाते हैं तो कहते हैं मंदिर में पत्थर जो टूटते हैं वो बाहर लगा देते हैं, उसके ऊपर चलकर लोग जाते हैं। और जो हैमर सहन करते हैं मूर्ति बन करके, सब उसको पूछते हैं। तो हमारी ये जिस्मानी मैराथन और आध्यात्मिक मैराथन, उसकी समानता कहाँ कहाँ है तो ये हम देखेंगे। कहाँ कहाँ समानता है जिस्मानी मैराथन और रूहानी मैराथन में समानता कहाँ कहाँ है? सबसे पहले है कि स्थूल मैराथन का एक लक्ष्य होता है कि यहाँ तक पहुँचना है, उसकी मंजिल लक्ष्य, उसके लिए हर पल जागते रहते हैं, सोते जागते वही मंजिल, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक उसके लक्ष्य सामने रहता है। हमारे यहाँ इस रेस जो है उसका हमारी मंजिल है, उसको अगर हम सामने रखते हैं कि हमको क्या बनना है, संपूर्ण बनना है, उस लक्ष्य भी हमारे सामने रहता है। दूसरा है कि उस मैराथन जीतने के लिए कितनी लगन, जितनी लगन उतनी उसकी जीतने की ज्यादा उम्मीद होती है, तो जितनी लगन उतनी सफलता। और यहाँ भी जितनी लगन उतना क्या होता है, देखो यहाँ दौड़ दौड़ के आते हैं, जितनी लगन उतनी स्पीड ज्यादा, और स्पीड ज्यादा करने के लिए यहाँ वहाँ कहीं न कहीं से जो कुछ मिलता है उसमें लग जाओ। जैसे जिस्मानी दौड़ के लिए और क्या जरूरी होता है, फिटनेस जरूरी होता है। अगर मोटा मोटा व्यक्ति दौड़ने जाएगा तो आधे से वापिस आएगा। कई लोग हमने यहाँ देखा है, जब ही मैराथन शुरू होता है ना तो बहुत उमंग उत्साह आता है, कभी किया नहीं है, लोगों को दौड़ करके दौड़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ 10 मील यहाँ 10 पाउंड चलते हैं और वापिस आ जाते हैं। तो जैसे जिस्मानी दौड़ के लिए शरीर की फिटनेस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, ऐसे रूहानी आध्यात्मिक दौड़ के लिए क्या करना पड़ता है, स्थिति की फिटनेस चाहिए, और क्या चाहिए, कौन सी प्रैक्टिस चाहिए, हल्का होना चाहिए, बुद्धि हल्की जाए, और क्या चाहिए, परहेज चाहिए। एक बात बाबा हर मुरली में, कोई भी मुरली ऐसी नहीं होती जिस मुरली में बाबा ने बात नहीं की हो कि आप अपने को आत्मा समझो, आत्माभिमान स्थिति, उसकी बाबा हमेशा बात करता है। तो आत्माभिमान स्थिति माना जिस कर्मेंद्रियों से मैं जो चाहूं वो कर सकूं उस समय, अगर नहीं चाहूं तो कर्मेंद्रियों से नहीं कर्म करूं, तो मेरा मन जैसे चाहे वैसा करे, उसकी प्रैक्टिस। दूसरा है कि शारीरिक फैट दूर करनी पड़ती है उसमें, और यहाँ और व्यर्थ, और क्या नेगेटिव, और क्या पर चिंतन, और यहाँ भी आलस्य और अलबेलापन, आलस्य और अलबेलापन होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि दिमाग जैसा काम करता है, धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। तो यहाँ भी आलस्य अलबेलापन पर चिंतन और परदर्शन की फैट दूर करनी पड़ती है। जिस्मानी दौड़ में रिकॉर्ड बनाती, ग्रीनिच बुक में उसका नाम आ जाता है, हु इज हु में उसका नाम आ जाता है। यहाँ भी बाबा कहते हैं अगर वो जीतते हैं 8 की माला में ऐसे आ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं यहाँ भी उसका कल्प कल्प के लिए रिकॉर्ड बन जाता है। जिस्मानी दौड़ के लिए और क्या चाहिए, पहनावा कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। अगर टाइट टाइट कपड़े पहन करके दौड़ेंगे तो दौड़ नहीं सकेंगे। ऐसे यहाँ क्या चाहिए, यहाँ कौन सी फरिश्तेपन की ड्रेस तो ऐसे पहन नहीं सकते, वो तो यहाँ चाहिए सरल। जितने हम सरल होंगे ना उतना हमारा सबके साथ हम एडजस्ट होकर के रहेंगे। तो हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, बोल, एडजस्टेबल होना चाहिए। संगठन में कैसा होना चाहिए, हल्के रहे, है ना, एक दो की राय को रिगार्ड देंगे तो संगठन चला सकेंगे। जैसे दादी जी है ना, वो संगठन को चलाती थी, दादियों के साथ कई दादियां जो होती थी उनके साथ साथ थी, लेकिन संगठन को कैसे चलाना है वो दादी चलाती थी। तो बाबा कहते हैं कि अगर इस रूहानी दौड़ में आगे जाना है तो सबको साथ में लेके जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बाबा कहता है कि यहाँ अकेले अकेले तो जाना ही नहीं, मैं दरवाजा खोलूंगा ही नहीं, सबको साथ में लेके जाना पड़ेगा। कोई कहे मैं पुरुषार्थ में आगे जाना है, नंबर लेना है, लेकिन संगठन को साथ में लेके जाना है। फिर जिस्मानी मैराथन और स्पिरिचुअल मैराथन में अंतर, भिन्नता क्या क्या है, ये तो समानता हुई ना, भिन्नता क्या क्या होता है। हाँ, ये स्थूल है और सूक्ष्म है। एक बार यहाँ जीतता है वो हमेशा जीतता है, लेकिन स्थूल में तो शारीरिक जो है उसमें कभी जीतता है कभी हारता है, और यहाँ तो एक बार जीत गया तो जीत गया, उसकी फिर से कोई कंपटीशन रेस नहीं है। रेस में बीच बीच में कौन आगे है कौन पीछे होता है वो पता पड़ता है स्थूल में, लोग देखते रहते हैं दूरबीन में कौन कौन आगे जा रहा है कौन कौन पीछे आ रहा है, और फिर बहुत लोगों को मालूम पड़ता है कि फर्स्ट आने वाला है। कभी कभी 15 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए वो पीछे हो जाता है, लेकिन वो भी दिखाई देता है। लेकिन आध्यात्मिक मैराथन में कौन आगे कौन पीछे मालूम ही नहीं पड़ता है, 10-10 घंटे योग करते रहो। कोई कहते हैं मैं 2 बजे से योग करता हूँ, इतना पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन बाबा कहते फाइनल रिजल्ट में मालूम पड़ेगा। तो यहाँ फाइनल रिजल्ट में मालूम पड़ता है कौन आगे है कौन पीछे है, लेकिन हम यहाँ बिल्कुल पता नहीं पड़ता है, थोड़ा भी नहीं पड़ता है। लास्ट तक चाल चलन भले कितनी भी अच्छी हो फिर भी नहीं पता पड़ता है, वो जाने और हम जाने ऐसा है। जिस्मानी रेस में आयु का बैरियर होता है, भाई छोटी उम्र है बड़ी उम्र है तो उसका कुछ अलग 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 सेक्शन होता है। यहाँ तो जब से शुरुआत हुई तब से लेके बाबा ने कभी कहा है ना कि नए नए बहुत आगे जा सकते हैं, ऐसा बोला है ना, पुराने से भी आगे जाता है। तो यहाँ मतलब कि आयु का बैरियर नहीं होता है, कोई 80 साल का भी आकर के भी आगे जा सकता है। ब्रह्मा बाबा देखो 60 साल की उम्र से भी मतलब कि कितना सबसे नंबर वन गए। तो उस रेस में और ट्रेनिंग भी होती है ना ट्रेनिंग, अगर मैंने बोला ना ट्रेनिंग नहीं और ऐसे ही सबको सबके साथ जुड़ गया नहीं कुछ आता है तो तकलीफ होंगी। अच्छा उस रेस में कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, यहाँ कौन सी ट्रेनिंग है, 7 दिन तो करना ही पड़ता है 7 डेज कोर्स, और 7 डेज कोर्स से भी कुछ नहीं होता है, कहीं तो 7 डेज कोर्स करके चले जाते हैं भूल भी जाते हैं। फिर उसके साथ साथ थोड़ी मुरली का थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी जरूरी होता है, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते वो भी हो जाता है। जिस्मानी मैराथन में मतलब कि कोई 3 घंटे की होती है, कोई उनसे भी कम होती है कोई उनसे भी कम होती है, लेकिन ये हमारी जो स्पिरिचुअल मैराथन कैसी है, कितनी लंबी, जीवन कम पड़ता है तो दूसरा जन्म भी लेना पड़ता है, बाबा कहता है ना कहीं कहीं तो आप कोई दूसरा जन्म भी, तो मैराथन रुकती नहीं है लगातार। फिर उसमें है ना तो जब भी जीतते हैं ना तो आपने देखा होगा फिनिशिंग जब लाइन होती है ना तो कई लोग गिर पड़ते हैं, उसको पकड़ने के लिए बहुत लोग होते हैं, गिर ना जाए, और पानी पिलाने के लिए बहुत तैयारी करने के लिए बहुत रहते हैं, और वहां फिनिशिंग लाइन जब होती है तो क्या होता है, वहां संपूर्णता की फिनिशिंग लाइन पूरी हो गई तो क्या होता है, हल्के हो जाते हैं, और क्या होता है, उड़ जाते हैं, और क्या होता है, खुशी होती है, और नहीं फिनिशिंग लाइन पूरी होती है ना तो एकदम उड़ नहीं जाते हैं, लोग देखेंगे ना भाई कहाँ कहाँ क्या क्या है, बाबा ने बोला था ना कि जब भी संपूर्ण सब हो जाएंगे या तो सब विनाश का एकदम समय हो जाएगा तो मैं सबको यहाँ प्रत्यक्ष करूंगा और सब देखेंगे कौन कौन कहाँ कहाँ है। तो हमारी जब फिनिशिंग लाइन पूरी हो जाएगी और संपूर्ण बन जाएंगे तो यहाँ तो होंगे, लेकिन वो फिनिशिंग लाइन और ये फिनिशिंग लाइन में क्या अंतर है, नहीं मैं ऐसी बात नहीं करती फोटो निकालने की, वो स्थूल बातें हो गई,
बाप दादा मेडल पहनाएंगे,
ये वहाँ हमारे ऊपर क्या होता है, बाप दादा तो सब कुछ करेंगे लेकिन हमें क्या अनुभव होता है, खुशी होती है, और क्या होता है, हमारी बैटरी बहुत फुल चार्ज हो जाती है, एकदम एनर्जी पावरफुल, हाँ थक करके गिर जाते, हम गिरते नहीं हम खड़े हो जाते हैं। उसमें जो जिस्मानी मैराथन होती है जो भी होता है उसमें जो कोच होता है गाइड करने वाला होता है गारंटी नहीं देता है कि आप जीतोगे नहीं जीतोगे, कितना भी आप प्रैक्टिस कर लो लेकिन वो गारंटी नहीं देता, लेकिन हमारा कोच कौन है, शिव बाबा है, वो कहता है कि मैं गारंटी करता हूँ, क्या कौन सी गारंटी,
आप
नहीं, वो ऐसा नहीं गारंटी करता, गारंटी बहुत सॉलिड करता है। वो कहता है जितने श्रीमत पर चलोगे, मैं जो कहता हूँ वैसे वैसे चलोगे तो आप जरूरी, और वहाँ ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहाँ तो एक दूसरे को मतलब टक्कर मारने वाले होते हैं। फिर इस हमारी जो आध्यात्मिक मैराथन होती है ना, उसमें विघन कौन कौन से आते हैं? विघन भी होते हैं ना? नहीं, वो अभी कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ स्पिरिचुअल मैराथन में हमारी जो विघन आते हैं उनकी बात है। शुरुआत जब होती है ना, शुरुआत जब हम करते हैं तो घर वाले अपोज थोड़े थोड़े होते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं आप, वहां नहीं जाओ, वो हमने कभी उसमें देखा नहीं, तो लोकलाज का डर होता है। लोग हमको, हमने यहाँ देखा है, हम जिसको भी कभी कोर्स कराते हैं ना, तो 7 दिन 6 दिन आता है, 7 दिन में उसको इतने माउंट आबू वाले कहते हैं नहीं जाना नहीं जाना, वो रुक जाते हैं, तो लोकलाज का डर होता है। वही बहनों की संस्था में कहाँ जा रहे हो, ऐसा कहते हैं। तो हमने एक भाई को बोला कि आपने 7 दिन का कोर्स करने के लिए मुरली में क्यों नहीं आते? बोला हमारे बैंक वाले कहते हैं बहनों की संस्था में क्यों जाते हो, तो लोकलाज। फिर और दूसरा एक बहुत बड़ा विघन है हमारे वातावरण में, अपना खुद का संस्कारों का होता है, संस्कारों का विघन आता है, कहीं ना कहीं संस्कार टक्कर खाती है। फिर और चलते चलते क्या होता है, थकान तो होती है, लेकिन थकान क्यों होती है? क्योंकि संशय आता है कि बाबा कहता है ठीक होगा कि नहीं होगा। कभी कभी हमको बाबा के जो बातें होती है ना, उसमें अकल्याण दिखाई देता है। हमारा कोई कोई दादी जी होती थी ना, तो क्या होता था कि कभी कभी दो लोग बाबा के ही बच्चे हैं, दादी के यहाँ ही रहते, लेकिन दोनों के बीच में उसको एक को जो डिसीजन लेना पड़ता है ना, एक को अच्छा लगता है एक को नहीं लगता है, तो जो अच्छा नहीं लगता है ना उनको बुरा लगता है ना, तो फिर क्या होता है, संशय आता है कि यहाँ भी ऐसा अन्याय होता है क्या, तो संशय होता है, तो संशय में फिर थकावट आ जाती है, थकावट हो जाती है, फिर रुक जाते हैं तो भी स्पीड कम हो जाती है। फिर समस्याएं भी आती है, पेपर के रूप में आती है, फिर नहीं धीरे धीरे बीमारियां तो आती ही है, बीमारियों में कोई पूछते नहीं है तो और ही तकलीफ होती है। हम है ना, तो जब भी अहमदाबाद में थे ना, तो एक बड़े भाई साहब था, उनको वहां रखा था, तो दीदी ने बोला था कि आप है ना तीसरी मंजिल पे रहना, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो एक दिन रहा और दूसरे दिन आ गए नीचे कि दीदी आप मेरा कमरा चेंज करो, जहाँ किचन है ना उसके आसपास ही रखो। बोला क्यों? बोला यहाँ जितने भी आते जाते उसको सबको पूछो मुझे पूछ के जाए। तो हम सब है ना, तो नहीं पूछते, तो वो कहते थे कि 3 बार मुझे पूछने का, कैसे हो मेरे साथ बैठने का, बात करने का, और बहुत बड़ा महारथी था, नाम नहीं दूंगी। तो हमें बहुत ऐसे खुश मिजाज भी थे, लेकिन हमको ऐसा बोला तो हमको ऐसा लगा ऐसा महारथी भाई है तो भी क्यों ऐसा, तो अकेलापन अच्छा नहीं लगता है, कोई पूछे तो और ही बीमारी खत्म हो जाती। लेकिन एक मैंने बहुत रियलिटी देखी है कि परिवार में जब भी कोई बीमार होता है ना, तो वो चाहते हैं कि हमारे परिवार वाले मतलब कि आए, और एक मिनट भी आप जाओगे ना तो उसकी खुशी भी बढ़ जाएगी, खून भी बढ़ जाता है उसमें, मतलब ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा नहीं कोई खून मतलब अंदर से ऐसे अलौकिक प्रकार की खुशी आती है। अगर नहीं पूछे ना तो बहुत तकलीफ होती है। ऐसा एग्जाम्पल भी हमारे पास है, यहाँ भी जिसके माता पिता यहाँ रहते हैं ना, तो उसके बच्चों को उसकी परवाह नहीं होती है, लेकिन माँ बाप को होता है कि हमको एक बार पूछे। लेकिन एक भाई ऐसे थे जो पूछता ही नहीं था, तो जब बहुत समय हो गया ना, बहुत अंतिम श्वास पर था, उसने बोला कि मेरा बेटा मुझे मिलने आए। तो कहते क्या है यहाँ लौकिक संबंध क्या रखना है, जबकि वो उनको खाना पीना सब खिलाते थे, उसका फ्रूट सब ध्यान रखते थे, लेकिन वो कहते इसमें क्या है, इसमें करना है, तो ऐसा होता है, तो मतलब कि जरूरी होता है। तो फिर साइड सीन भी बहुत आते हैं। कौन सी साइड सीन आती? साइड सीन ये आती है कि वो फॉरेन जाता है मैं भी जाऊं, वो साइड सीन मतलब यहाँ इतना पुरुषार्थ करते हैं। हाँ मैं गई थी, लेकिन वहां मुझे जो वेस्ट इतना टाइम हो गया ना, तो मुझे बहुत अंदर से दर्द हो गया था कि अरे 15-20 दिन जैसे वेस्ट टाइम होता है। दर्द वाली बात पर भी साथ में बता दो, अभी तो जाएंगे सबको साथ में लेके जाएंगे। इतनी सर हाँ टूर। ट्रैवल ना ना साथ में जो ग्रुप होगा ना तो ये होमवर्क देते रहेंगे हमको, तो हमारा तो सफल हो ही जाएगा।
जो 15 दिन आपके लिए क्या दर्द हुआ, आपको क्या फीलिंग है?
फीलिंग ये आई कि टाइम जितना सफल होना चाहिए उतना नहीं होता है। सेवा के लिए ही जाते हैं लेकिन टाइम इसलिए वेस्ट होता है कि वो लोग हमको इधर जाओ उधर जाओ, तो जो चलने में जाने में बहुत टाइम लगता है एक जगह से दूसरे जगह, सिर्फ घंटे का क्लास होता है लेकिन एक जगह से दूसरे जगह पे जाने का, वहां फिर अरेंजमेंट करने का बहुत मतलब टाइम जाता है। फिर बहुत बड़ी नहीं मेरी इच्छा थी, मैंने बोला कि सब जाते हैं मैं भी एक बार जाऊं देखूं। हाँ मेरी इच्छा थी। फिर इस ज्ञान मार्ग में बहुत एकदम पतली जंजीरें हैं। कौन सी जंजीरें? नाम मन शान, क्योंकि नाम मन शान की जंजीर इतनी पतली दिखाई नहीं देती है लेकिन वो हमें अपनी मंजिल से रुकावट लाती है। वो ज्ञान जो हम रोज सुनते हैं क्यों सुनते हैं, किस लिए सुनते हैं? फिर ज्ञान युग में हमने देखा है, भक्ति मार्ग में तो देखा है कि जिस जिस व्यक्ति बहुत सिद्धियां आती है ना तो उसको अहंकार आ जाता है, इतना अहंकार आता है बहुत आता है। तो यहाँ भी जब जब ज्ञान युग में जितना जितना आगे जाता है तो सारी कमियां तो खत्म हो जाती है लेकिन एक प्रकार का सूक्ष्म अहंकार आता है। और सूक्ष्म अहंकार कल भी किसी ने बताया था ना कि वो पांचवी मंजिल से नीचे उतार देता है। नहीं वो मतलब फिर क्या होता है, रेस के बदले रिस होती है। रिस माना रेस करना तो बहुत अच्छा है, एक दूसरे से आगे जाना जरूर चाहिए लेकिन रिस माना कि दूसरे को धक्का मार के जाना उसको रिस कहते हैं, है ना? फिर चलते चलते इतनी भी टक्कर हो जाती है कि मुश्किल हो जाता है आगे, हमारी दौड़ मुश्किल हो जाती है। फिर उसमें ध्यान देने योग्य क्या कौन सी बातें ये बताते। सबसे पहले जब वो मैराथन करते हैं उसमें खुराक जो खाते हैं ना भारी नहीं खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, अच्छा अच्छा खाना मतलब कि तो शक्तिशाली। तो यहाँ क्या चाहिए? मुरली। और क्या चाहिए? संकल्प हमारा बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। फिर वहां पट्टे पर दौड़ते थे, भाई ने बोला ना पट्टा होता है उसके पर दौड़ना पड़ता है, यहाँ कौन सा पट्टा है? मर्यादाओं का पट्टा। और कौन सा है? और कौन सा? ड्रामा का पट्टा। बहुत बहुत जरूरी है, अगर इस ब्राह्मण जीवन में ड्रामा नहीं होता तो आधे ब्राह्मण मर जाते, क्योंकि ड्रामा ऐसा है ना कि बहुत दुखद पल बहुत ए हो जाता है, तभी कहते ड्रामा पॉइंट समझो, ड्रामा समझो। और हमने ये भी देखा था, एक बहन थी ना तो वो बहुत नर्वस थी, वो बहन का नाम भी नहीं दूंगी। नर्वस, इतनी नर्वस थी कि रात दिन बहुत ही कुछ ऐसा हुआ था, वो चिंता में थी। तो ये एक ड्रामा की बुक्स किसी ने उसको दी तो थोड़े 15 दिन में वो बहुत अच्छी हो गई। तो मैंने बोला आपका मूड बहुत अच्छा हो गया, बोला एक बुक हाथ में आ गई है। मैं कौन सी? बोले ड्रामा की, कि ड्रामा कैसा है, कल्याणकारी है, किस प्रकार से निर्दोष है, सब कुछ मतलब बताया था। तो ड्रामा तो शक्तिशाली संकल्प चाहिए कि सीधा अपनी मंजिल पर ध्यान देना पड़ता है। यहाँ जैसे आपने देखा हो दुनिया में भी जो लोग पढ़ते हैं ना, जो डॉक्टर्स बनते हैं, जो मतलब कि बड़ी बड़ी अथॉरिटी बनते हैं या तो बहुत अभ्यास में बहुत पक्के होते हैं, उसको आपने देखा होगा। जो आर्ट्स वाले होते हैं बार बैठ के पढ़ते गप्पे मारते रहते हैं, साइंस कॉमर्स वाले भी ऐसा करते हैं, लेकिन डॉक्टर बनने वाले होते हैं ना बहुत ध्यान देते हैं अपने ऊपर। कॉमर्स था लेकिन कॉमर्स वाले फिर भी थोड़ा ध्यान दे, लेकिन आर्ट्स वाले तो हमने देखा है फुटपाथ पर बैठ करके पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं, और जब एग्जाम आती है ना तभी मतलब कुछ न कुछ कॉपी भी कर लेते हैं। फिर सीधा अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए, इधर उधर नहीं। तो यहाँ चलते चलते एक बार दादी जानकी जी ने कहा था कि मैं जब भी निकलती हूँ तो वो सबको बोलते चलो चलो, लेकिन कोई चले ना चले मैं तो अपने आप चली जाती हूँ, मैं किसी की राह नहीं देखती हूँ कि पीछे कौन आता है। तो बाबा कहते अपनी मंजिल पर जाना है तो फिर हम पीछे वाले आते हैं कि नहीं आते हैं, पीछे वाले का ध्यान देना माना क्या, उसकी कमजोरियों को देखना, ये सब कुछ है। पीछे वाले का ध्यान देना मतलब कि उनके प्रति हमारा ऐसा ध्यान होता है जो हमको भी पीछे हटा देते हैं। तो अपनी मंजिल को सामने रखना है, और दूसरा क्या करना है, जैसे वो पट्टी पर चलते हैं ना, तो बाजू वाले पर देखता रहेगा तो उसकी दौड़ ठीक नहीं होगी, उसका पटा भी बदल जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी मंजिल को सदैव सामने रखते हैं कि मुझे यहाँ पहुंचना ही है, तो फिर उस मंजिल को पहुंचने के लिए और भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? फॉलो करना है किसको? जो भी हमारे सामने भाई बहन आते हैं ना, भाई बहन बहुत अच्छे होते हैं, है ना, उनकी विशेषताएं हैं, उनका गुण है, तो गुण को और विशेषताओं को तो ध्यान में देना है। वो जो करते हैं उसको फॉलो नहीं करना है, बाबा नहीं कर बताए नहीं, क्या करना है, वो जो कह रहे हैं ना अच्छी अच्छी बातें उसको फॉलो करना है, लेकिन वो अपने जीवन में क्या करते हैं उसके सामने ध्यान नहीं देना है, नहीं तो हम गिर जाएंगे। इसलिए वो जो कहते हैं वो करो। वो मैंने एक बहुत कोई साधु संत था जो अभी नहीं रहा, उसके एक बुक में पढ़ा था, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उसको फॉलो करके लोग चले गए, लेकिन वो जो करता था वो नहीं, उसको फॉलो नहीं करते थे। तो हमने सामने जो भी आते हैं ना, जो भी सुनाते हैं ना, अच्छा अच्छा सुनाते हैं, है ना, वो सुनने के बाद कहते हैं ना, कभी सुनने वाले से सुनने वाले आगे चले जाते हैं, तो क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो सुनते सुनते वो उसमें धारणा करके चले जाते हैं।
आप सुना रहे हो, नहीं करना है।
नहीं, मैं सुनाती नहीं हूँ, मैं तो, मुझे टॉपिक दिया है तो मैं तो बताऊंगी ना, देख देख सुना रही हूँ, और सुना रही हूँ तो मैं ऐसे थोड़ी सुना रही, मेरी भी मंजिल तो एक ही है ना, अपने सबकी मंजिल एक है, है ना, हम कोई गुरु नहीं है ना कोई शिष्य, ऐसी बात नहीं है ना। फिर क्या ध्यान देना है, बीच बीच में स्पोर्ट्स ड्रिंक लेते हैं ना, एनर्जी वाला पानी पीते हैं, तो यहाँ भी प्रभु प्यार का पानी पीना है। क्यों पीना है? भावनाएं होनी चाहिए, धीरे धीरे हमारी भावनाएं कम होती जाती है सबके प्रति, तो क्या होता है वो, हम जैसे उसमें पानी कम हो जाता है तो क्या होता है, मुझे इंग्लिश इतना नहीं आता, क्या होता है, हाँ यहाँ भी ऐसे हो जाता है। तो ऐसा नहीं करने का, हमें प्रभु प्यार का ऐसा प्याला पीना है तो सबके प्रति हमारी भावनाएं बनी रहे, भावना और ही जागृत हो जाए, भावना कम ना हो जाए। वो पानी जो नहीं पीते है ना, यही ना, ये अमृत, बाबा कहते हैं अमृत जो पियो, अमृत पीना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, तो फिर ये सब होता है। फिर विजयी बनने की विधि, अब तीन चार ही बातें, लक्ष्य मंजिल को सदा सामने रखना है, स्वमान का अभ्यास, भले एक ही स्वमान हो लेकिन उसका अभ्यास बार बार करते रहना, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, विजयी, हाँ विजयी, जब भी हम एक स्वमान लेते हैं ना, मैंने एक बार विजयी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाबा ने विजय का तिलक, तो जब भी वो याद आता है तो हमारे सामने जितने भी असफल करने वाली चीजें होती है ना, वो आसपास खिसक जाती है, मंजिल को बराबर रास्ता दे देती है। फिर है कि एक दो को राय को रिगार्ड देंगे तो हमारे संगठन मजबूत हो जाएगा, लेकिन इस हमारी जो मैराथन, इस बहुत मुख्य बात एक है, बहुत मुख्य, कौन सी है, एकदम मेन कौन सी है, इसके बिना चल ही नहीं सकता ये दौड़, हाँ पवित्रता है, क्योंकि उनके बिना कितना भी कुछ भी करो कुछ काम करने, और उसके लिए सर्व सबनिक बाप से, जैसे दौड़ जीतने के लिए क्या करते हैं, दौड़ जीतने के लिए एक दौड़ पूरी हो गई उसके बाद प्रैक्टिस बंद नहीं हो जाती है, दूसरी तीसरी चौथी, तो हमारी जो भी हमें कोई होमवर्क देता है तो हमारा पूरा हो गया तो हम बैठ नहीं जाना है, अभी जो भी पुरुषार्थ में दौड़ते रहना है। ओम शांति।